संबंध से भाग गया.
Thirdly, the strength of his conviction.
और तीसरी बात उसके एहसास का सामर्थ.
At one point, Joseph forgives all his brothers.
और एक क्षण ऐसा जब वो अपने सारे भाइयों को माफ कर देता
है. Those were moments that makes Joseph's life so amazing.
और वही क्षण थे जिन्होंने यूसुफ के जीवन को इतना अद्भुत कर दिया.
The dream. The first one.
सबसे पहले.
Joseph's father was Jacob, as you know.
और यूसुफ का पिता याकूब था, जैसे आप जानते
Jacob,
हैं.
Jacob had his own story.
और याकूब की अपनी खुद की कहानी थी.
He loved a girl called Rachel.
और वो रेचल नाम की लड़की से प्रेम करता था.
But he could not marry her for free.
लेकिन वो ऐसे ही उससे विवाह नहीं कर सकता था.
So he had to work for 7 years to get this girl that he liked so much.
तो उसे 7 साल काम करना पड़ा ताकि वो लड़की से वो विवाह कर सके जिससे वो प्रेम करता था.
His father-in-law's farm.
और अपने ससुर के खेत में उसने काम किया.
After 7 years, he was eagerly waiting for this beautiful girl.
और 7 वर्ष के बाद वो रुका था कि अब मैं ये लड़की से विवाह करूंगा.
But when he got married, he realized it was not Rachel, but Rachel's sister was given to him.
लेकिन जब उसकी विवाह हुआ तो उसने देखा वो रेचल नहीं थी लेकिन उसकी बहन थी.
But he had worked for another 7 years in order to get Rachel.
और उसे और 7 वर्ष के लिए काम करना पड़ा ताकि
वो the love of his life.
और जो उसकी जीवन की प्रेमिका
थी. But one problem she had, she was barren.
लेकिन एक मुश्किल थी उसकी,
वह बांझ थी. She couldn't have any children.
उसके बच्चे नहीं हो सकते थे.
After many years, God opened Rachel's womb and the son was born.
सालों के बाद परमेश्वर ने रेचल की कोख को खोला और एक बेटा जन्मा.
And his name was Joseph.
और उसका नाम यूसुफ था.
Because of that, Jacob loved Joseph so much.
और उसी के कारण याकूब यूसुफ से बेहद प्रेम करता था.
And he loved Joseph more than all the sons that he had at that time. He had 10.
उसके 10 बेटे थे लेकिन उनमें से ज्यादा सबसे ज्यादा वो यूसुफ से प्रेम करता था.
Because he was his favorite son, he gave him a multicolored coat.
और क्योंकि उसका पसंदीदा बेटा था वो उसने एक रंग बिरंगी ऐसी वस्त्र उसे पहनने के लिए दे दी.
Probably because he was the favorite, he had a bit of a what is that? Attitude, yes.
और शायद वो क्योंकि सबसे पसंदीदा था उसके पास वो स्वभाव था.
It says he brought bad report about his brothers to the father.
और ऐसा लिखा है वो बुरी खबरें अपने भाइयों को लेकर आता था और अपने पिता को देता
and
था.
Brothers didn't like him so much.
और भाई उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे.
But somehow God was after this young man.
लेकिन किसी तरह परमेश्वर इस युवा व्यक्ति के पीछे था.
But at the age of 17, God gave him a dream.
लेकिन ऐसा हुआ कि 17 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक ख्वाब
दिया. And in this dream he saw there were 12 sheaves or 11 sheaves is it 12 sheaves.
और उन्होंने एक ख्वाब में देखा ऐसे 12 बोरियां थी.
And there was one in the center.
और एक बोरी बीच में रखी
थी. And all
थी.
These 12 sheaves were bowing down to the one in the center.
और ये सारी जो बोरियां थी वो एक बोरी जो बीच में रखी थी उनकी और दंडवत हो रही थी, झुक रही थी.
In a way God was saying all your brothers and your father and mother one day they will bow to you.
और एक प्रकार से परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हारे सारे भाई, तुम्हारे माँ और पिता एक दिन तुम्हारे और दंडवत होंगे.
And that dream was repeated again.
और ये ख्वाब फिर से आ रहा था, दोबारा देखा गया.
Let me just tell you something.
मैं आपको कुछ बताऊं.
When God speaks to you, he doesn't just speak once, he speaks repeatedly.
जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो एक ही बार नहीं बात करता लेकिन वो दोबारा बात करता है.
It is to be, you can safeguard yourself when God speaks again.
जब परमेश्वर आपसे दोबारा बात करता है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं.
And in this dream he saw the similar thing.
और यह ख्वाब में भी उसने वही बात देखी.
And you know the bad thing that he did, he went around telling his brothers, he says, one day you all are going to bow down to me. One day your father and mother, you all are going to bow down to me.
और उसने एक बुरा काम किया, वो अपने भाइयों के पास गया और कहा कि एक दिन तुम मेरे सामने झुकोगे, माँ बाप भी मेरे आगे झुकेंगे एक दिन.
And the brothers got more angry.
और भाइयों को और ज्यादा गुस्सा आ गया.
And they plotted to kill him.
और उन्होंने उसे मारने की
तैयारी की. They were jealous.
वो उससे जलन करते थे.
And they threw him into a well.
और उन्होंने एक कुएं में उसे फेंक दिया.
He was sold to the Egyptians.
और उन्हें मिस्रों को बेच दिया गया.
And for the next 25 years he lived with no relatives around him.
और 25 साल तक कोई भी रिश्तेदार के बगैर वो जी रहा था.
He worked as a slave.
और उसने एक दास के रूप में काम किया.
He was in prison.
और वो जेल में था, कैद में था.
He was overlooked by his close friends.
और उसके दोस्त भी उसकी ओर नहीं देखते थे.
If you look at the story, it's amazing.
अगर आप ये कहानी को देखें तो बहुत ही अद्भुत है.
Many many difficult situations that he went through.
कई ऐसी मुश्किल स्थितियां हैं जिससे वे गुजरे.
Probably he went to a place, you know, reached a place he was so discouraged, and he says, "All those dreams I had, probably it was not from God."
और वो ऐसी स्थिति में आ गया कि वो सोचने लगा कि शायद जो ख्वाब मैंने देखे वो सारे परमेश्वर की ओर से नहीं थे.
This story had many twists and turns.
और इस कहानी में ऐसे कई मोड़ हैं.
Was the dream fulfilled in his life?
क्या वो ख्वाब उसके जीवन में पूरा हुआ?
Yes.
हाँ.
God is a God who fulfills dreams and vision.
परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ख्वाब और दर्शन को पूरा करता
है. If that dream, if that vision, if that prophetic word is from God, God will see to it that He fulfills it.
अगर वो ख्वाब, यदि वो दर्शन या भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर ये जरूर देखेगा कि वो पूरा हो जाए.
You know, we have this value which is so precious to us as regions beyond churches. It says we are shaped by the prophetic.
और ये मूल्य क्षेत्र अपार कलीसिया होने के नाते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा आकार पाते हैं.
We are guided by the supernatural.
और हमारा मार्गदर्शन अलौकिक बातों के द्वारा होता
है. God gives dreams, vision as individuals and churches.
और परमेश्वर ख्वाब देता है, दर्शन देता है व्यक्तिगत रूप में और कलीसियाओं के रूप में.
In other words, God gives promises to his people.
और दूसरे शब्दों में बताओ तो परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञाएं देता है.
I cannot tell you how I was encouraged today by that word that Patricia brought in the prayer, because it was so much in line with what I was feeling this morning.
मैं आपको कैसे बताऊं, मैं इतना प्रोत्साहन पाया जो शब्द पेट्रिशिया लेकर आई, क्योंकि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ था मैं जो बांटने वाला हूँ.
God is a God who makes promises and he's a God who fulfills promises.
परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रतिज्ञाएं देता है और प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है.
It can come as a dream, it can come as a scripture or a vision or a prophetic utterance.
वो ख्वाब के रूप में आ सकता है, वचन के रूप में, दर्शन के रूप में या भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा.
Has God spoken to you?
क्या परमेश्वर ने आपसे बातें की
हैं? Has God given you a dream?
क्या परमेश्वर ने आपको ख्वाब दिया है?
Has God given you a promise?
क्या परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है?
Has God given you a vision for the future?
क्या परमेश्वर ने भविष्य के लिए आपको दर्शन दिया है?
Joseph's life was completely guided by that dream that he had when he was 17 years old.
और यूसुफ का जीवन पूरी तरह से उस ख्वाब के द्वारा मार्गदर्शन पा रहा था.
Not only God fulfilled while he was alive, but it was continued to be fulfilled even after his death.
परमेश्वर ने तब वो जीवित था तभी ही नहीं पूरा किया, लेकिन उसके मर जाने के बाद भी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया.
350 years later, God, later the nation of Israel remembered to take his bones out of Egypt to the promised land.
और 350 वर्ष के बाद इस्राएल के लोगों को याद आया कि उसकी हड्डियों को उस भूमि से बाहर ले जाना है.
Every time the Israelites thought of the bones, it reminded of the promises of God.
और जब जब इस्राएलियों ने उन हड्डियों को देखा, तब तब उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की सुधि हुई.
Imagine 350 years later.
सोचो 350 वर्ष के बाद तक.
Yeah, people forget after 2 days.
यहाँ पर लोग 2 दिन के बाद भूल जाते हैं.
350 years later, the Israelites remember to take the bones of Joseph.
और 350 वर्ष के बाद भी इस्राएलियों को याद रहा कि यूसुफ के हड्डियों को ले जाना है.
I want to tell you something.
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ.
If you're a man or a woman whom God has given you promises, it's an exciting journey.
अगर आप ऐसी महिला या पुरुष है जिन्हें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिए हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत सफर है.
Because you have seen something something ahead of you.
क्योंकि आप कुछ आपके आगे देख रहे
हैं. You have seen something into the future.
आपने भविष्य को लेकर कुछ देखा है.
It drives you. It takes you forward.
वो आपको उत्साहित करता है, आपको आगे ले जाता है.
You know, one of the preachers said it's like the anchor of the ship.
और एक प्रचारक ने कहा वो जो जहाज पर लंगर होता है उसी के
Basically,
समान है.
The anchor is always put behind the ship
और ज्यादा करके लंगर को पीछे रखा जाता है जहाज के.
But the promises are God like the anchor is being thrown into the future and the ship is being pulled and pulled and pulled until you reach the fulfillment of the promises of God.
लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा ऐसी है जैसे वो लंगर को आगे फेंका जाता है और आप भविष्य की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं.
Has God given you promises?
क्या परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दी
हैं? It doesn't need to be big.
और जरूरी नहीं वो प्रतिज्ञाएं बड़ी हो, वो छोटी प्रतिज्ञाएं भी हो सकती
है. Maybe I mentioned to you before, we had a elderly lady in our church, her name was Genevieve.
और शायद मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे कलीसिया में एक बुजुर्ग महिला थी, उनका नाम जेनेवीव था.
She had nobody, she had no close relative or husband, children, she lived alone.
और उसका कोई भी नहीं था, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं, वो अकेले रहती थी.
Church was the family.
और कलीसिया उसके लिए परिवार
था. But God gave her one verse as a promise to her.
लेकिन परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया प्रतिज्ञा के रूप में.
Many many years before.
कई कई साल पहले.
In John chapter 1 verse 18 it says, I will never leave you, as often I will come to you.
और यूहन्ना की किताब में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथों के समान नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा.
She lived alone.
वो अकेले रहती थी.
But she had this promise. It says, I will never leave you alone. I will come to you.
लेकिन उसके पास ये प्रतिज्ञा थी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा.
You know, something,
मैं तुम्हारे पास
आऊंगा. She told me.
आपको पता है उसने मुझे कुछ बताया.
It says, I will not die in my sleep.
उसने कहा कि मैं सोते हुए नहीं मरूंगा.
Someone will be with me.
कोई मेरे साथ होगा.
And she said, I will die in your arms.
और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बाहों में मरूंगी.
She told me, I will die in your arms.
और उसने कहा मैं तुम्हारी बाहों में.
And there will be church people around me.
और कलीसिया के लोग मेरे आसपास होंगे.
You know, when she died,
आपको पता है जब वो
मरी,
तब वो मेरे हाथों में ही मरी.
She was never left often.
वो कभी अकेले नहीं थी, अनाथ नहीं
थी. She lived like a richest woman in the world.
वो सबसे श्रीमंत महिला की तरह रही.
Because she knew God was with her.
क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर उसके साथ है.
There's promises that God has given to her.
क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञाएं दी है.
You know, Steve says, you know this. He says promises can be called as life verses.
और स्टीव कहते हैं कि प्रतिज्ञाएं जीवन के वचन के समान कही जा सकती
है. For Apostle Paul, this was his verse.
और प्रेरित पौलुस के लिए यह वचन था.
God said to him, I will make you a light to the Gentiles.
और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं अन्य जातियों के लिए तुझे ज्योति के समान बनाऊंगा.
That was his life verse.
और वो उसके जीवन का वचन था.
Everything about his life is his, I will make you a light to the Gentile. Full stop.
वो उसके जीवन के लिए एक वचन था कि मैं अन्य जातियों के लिए तुझे ज्योति के समान बनाऊंगा.
That took him for almost 30 years of his ministry.
और उसने उसकी सेविकाएं 30 साल तक की उस वचन के द्वारा.
God fulfilled it.
और परमेश्वर ने उसे पूरा किया.
For me, when I became a Christian on the 8th of February 1987.
और 1987 में 8 फरवरी को जब मैं मसीह बना.
I heard a voice.
तो मैंने एक आवाज सुनी.
Says you have been born for this.
और वो आवाज ये थी कि तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ
है. It became a life verse for me.
और वो मेरे लिए जीवन का वचन हो
गया. What you are living for?
हम क्यों जी रहे हैं?
Me. What I'm living for?
मैं किस कारण जी रहा हूँ?
Living for the gospel.
मैं सुसमाचार के लिए
Living
जी रहा हूँ.
Living for the church.
कलीसिया के लिए जी
Living
रहा.
Living for the expansion of His kingdom.
और मैं परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए जी रहा हूँ.
John Paul Jackson, you know, prophesied that became another life verse for me.
और John Paul Jackson ने भविष्यवाणी की, वो भी मेरे लिए जीवन का वचन हो गया.
For Steve, our friend.
और स्टीव के लिए, हमारे मित्र के लिए,
God gave him a prophetic word.
परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी का शब्द दिया.
He says, I will take you to the daisies of Africa.
और उसने कहा कि मैं तुझे अफ्रीका के जंगलों पर ले जाऊंगा.
नो डेजीज, इट्स अ फ्लावर.
माफ करना, डेजीज अंग्रेजी में एक फूल है.
मैं वहां पर तुम्हें ले जाऊंगा. आई विल टेक यू टू द डेजीज ऑफ अफ्रीका एंड टू द नेशंस.
और तुझे राष्ट्रों तक ले जाऊंगा.
दैट बिकेम हिज लाइफ वर्स.
और वो उसकी जीवन का वचन हो
गया. एंड दैट्स व्हाट गॉड इज डूइंग.
और वही परमेश्वर कर रहा है.
गॉड टुक हिम टू द डेजीज ऑफ अफ्रीका.
और परमेश्वर ने स्टीव को अफ्रीका के उन फूलों तक ले गए.
देन टू द नेशंस.
और फिर वो राष्ट्र तक गए.
व्हाट इज दैट गॉड प्रॉमिस्ड यू.
और वो क्या है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा आपको दी है?
What is that God has given you as a promise?
और वो क्या है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है?
I want to encourage you.
मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता
हूँ. It is nothing but hearing His voice.
कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना.
And you know this is God's promise for you.
और आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए.
You hold on to it.
आप उसे पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं.
And you live, you know, believing God for it.
और आप जीते हैं परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके लिए.
And I tell you, I want to tell you, it comes again and again in your life.
और मैं आपको कहूँ, वो फिर से आपके जीवन में आती रहती है.
It doesn't just come once and finish. It comes again and again in different forms.
वो एक ही बार आकर खत्म नहीं होती, लेकिन अलग-अलग तरीकों से आती रहती है.
Joseph's life was about a dream.
और यूसुफ का जीवन भी एक ख्वाब को लेकर ही था.
Our life is about a dream.
हमारा जीवन भी एक ख्वाब की तरह ही
है. One day we will be there with him. Hallelujah.
एक दिन हम वहाँ होंगे उसके साथ में. Hallelujah.
They will be dancing in heaven with Jesus.
और स्वर्ग में नाचना होगा यीशु के साथ.
There will be joy unspeakable.
और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना आनंद होगा.
Everlasting joy will be your portion. Hallelujah.
अनंत काल का आनंद आपका भाग होगा. Hallelujah.
Secondly, about Joseph's life.
और दूसरी बात यूसुफ के जीवन को लेकर.
The test of character.
उसकी चरित्र की परीक्षा.
You know, as I said, you know, Joseph's story is what reminds you of Joseph's story in fleeing sexual temptation.
और जब हम यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं, एक बात हमें याद आती है कि वो शारीरिक बातों से भाग जाता था.
He was 17 years when the dream was given.
और वो 17 वर्ष का था जब उसे ख्वाब दिया गया.
And when he met his brothers at the end, it was 25 years later.
और जब वो उसे भाइयों से मिला वो 25 वर्ष के बाद था.
Why so much time?
इतना समय क्यों?
Why?
क्यों?
God, why don't you use us?
परमेश्वर तुम हमारा इस्तेमाल क्यों नहीं
करते? So many people are dying in this nation.
कितने लोग इस राष्ट्र में मर रहे हैं?
God is building your character.
परमेश्वर आपका चरित्र बना रहा है.
Moses, it took 40 years for to make a man who will become the one who will take the deliverer of Israel.
को 40 वर्ष लगे ताकि वो परमेश्वर उसे वो मनुष्य बना सके जो उन लोगों को छुड़ा सके.
It took another 40 years to see the fulfillment of the nation of Israel's deliverance.
और 40 वर्ष लगे इज़राइल राष्ट्र के छुटकारे को होने के लिए.
David was 13 when he was called.
और दाऊद 13 वर्ष का था जब उसे बुलाया गया.
But only when he became 30 he became the king.
लेकिन जब वो 30 वर्ष का हुआ तब वह राजा बना.
Why so many years, Lord?
इतना वर्ष क्यों लगते हैं परमेश्वर?
God tests our character.
परमेश्वर हमारे चरित्र
की परीक्षा
लेता है.
Deuteronomy 8:2. It says, remember how the it will come on the screen. Deuteronomy 8:2. Remember how the Lord your God led you all the way into the wilderness these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart.
व्यवस्था विवरण की किताब 8वां अध्याय 2रा वचन. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या-क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं.
God tests our hearts.
परमेश्वर हमारे हृदय की परीक्षा लेता है, जांच करता है.
To see what's here.
देखने के लिए कि अंदर क्या है.
He tests our hearts.
वो हमारे हृदय की
Joseph
परीक्षा
was
लेता
tested.
है. यूसुफ की परीक्षा हुई.
You know, this test was severe.
और ये परीक्षा बहुत ही गंभीर थी.
God is not just interested in what we do, but how we do.
परमेश्वर सिर्फ हम क्या करते हैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हम कैसे करते हैं उसमें दिलचस्पी रखता है.
The gap between the promise and the fulfillment is an important time.
और प्रतिज्ञा और उसके पूरा होने में जो अंतर है.
It is in that time God builds our character.
और उसी समय में परमेश्वर हमारे चरित्र को बनाता है.
God will take you to great heights, but what will keep you is your character.
परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान तक ले जाएगा, लेकिन जो बात आपको रखेगी वो है आपका चरित्र.
Like I said, Joseph had a bit of a pride.
जैसे मैंने आपको कहा, यूसुफ में वो थोड़ा बहुत घमंड था.
He was the favorite one.
वो सबसे पसंदीदा था.
He had the multicolored coat.
और वो रंग बिरंगी वस्त्र उसके ऊपर डाली
गई. You know, even God is with him.
और उसे लगा कि परमेश्वर भी उसके साथ है.
God had to deal with those pride.
और परमेश्वर को उन बातों से को ठीक करना था.
God had to deal with those attitudes.
परमेश्वर को उस स्वभाव से डील करना था.
He was sold, as I said.
उसे बेचा गया, जैसे मैंने आपको बताया.
But he ended up in a person's house called the Potiphar.
लेकिन वो पोटीफर व्यक्ति के घर पहुंच गया.
He was a very rich man.
और वो बहुत ही श्रीमंत व्यक्ति था.
And it says he found favor with him.
और वहाँ पे लिखा है कि उसने उसके साथ अनुग्रह पाया.
When God is with you, you find favor with God.
और जब परमेश्वर आपके साथ होता है, तब आप उससे कृपा पाते हैं.
Your enemies become your friend.
आपके शत्रु आपके मित्र बन जाते हैं.
And it says, you know, he was put in charge of everything what the Potiphar had.
और वहाँ पे लिखा है कि पोटीफर के पास जो कुछ भी था उसकी देखभाल के लिए यूसुफ को रखा गया.
He was put in charge of everything except his wife.
और उसे हर एक चीज को संभालने के लिए कहा गया उसकी पत्नी को छोड़कर.
Except my bedroom, everything you can be in charge of.
और मेरे बेडरूम को छोड़कर आप सभी चीज का संभाल कर सकते हैं.
And he was young.
और मैं आपको कहूँ वो नौजवान था.
Not married.
उसकी शादी नहीं हुई थी.
You know, probably is in his 20s.
शायद 20 की उम्र के करीब था वो.
He was handsome, perhaps he was very handsome.
और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था.
And this Potiphar's wife was making advances to him.
और ये पोतीफर की जो पत्नी थी वो उसकी तरफ आकर्षण उसे आशर आकर्षण कर उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी.
And the devil was screaming, compromise, compromise.
और शत्रु चिल्ला रहा था, समझौता समझौता.
Nobody will see.
कोई देखेगा नहीं.
You will not be accused of this.
और तुम पर इसका दोष नहीं
लगाया जाएगा. She has taken care of everything.
और वो सब कुछ संभाल लेगी.
You know, what did Joseph do?
लेकिन यूसुफ ने क्या किया?
He fled.
वो भाग गया.
He passed the test.
और उसने परीक्षा में पास हो गया.
Imagine you have been put in charge of Ambani's family.
सोचो कि आपको अंबानी के परिवार की देखभाल के लिए रखा गया.
Okay, what is that? How the building called? Antella. Yeah.
वो बिल्डिंग का नाम Antella.
Everything you have access to except Nita Ambani.
और आप हर एक जगह तक पहुंच सकते हैं नीता अंबानी को छोड़कर.
Joseph passed the test.
यूसुफ ने परीक्षा को पास कर लिया.
You know, we have a story in the Garden of Eden.
आपको पता है वो कहानी है अदम की वाटिका की.
God said everything except this one.
और परमेश्वर ने कहा सब कुछ लेकिन यह एक चीज को छोड़कर.
Millions of trees and millions of fruit, but this tree and this fruit you shall not touch.
करोड़ों पेड़ लेकिन यह वृक्ष और ये फल को आप नहीं छुओगे.
And the enemy said, forget the करोड़ों, ये अच्छा है.
और शत्रु ने.
Am I right?
इस प्रकार से कहा जैसे फ्रैंको ने कहा.
Yeah.
क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
Forget about this beautiful things. No, this one.
ये सारी खूबसूरत चीजों को छोड़ो. नहीं नहीं ये वाला.
And the Bible says Adam and Eve failed.
और शास्त्र में लिखा है कि आदम और हवा हार गए.
But Joseph passed the test. Hallelujah.
लेकिन यूसुफ ने वो परीक्षा को पास कर
the
लिया.
Hallelujah. He fled.
और शास्त्र में लिखा है वो भाग गया.
You know when the कुत्ता comes, you know, behind you, कुत्ता आता है हमारा पीछे. You know, Labrador, what is that?
आपको पता है जब कुत्ता पीछे लगता है तो.
Doberman. You know.
Doberman.
How you run?
आपको पता है आप कैसे भागते हैं?
That's what in 1 Timothy chapter 2 it says. Flee sexual immorality.
और एक तीमितियों की किताब में वही लिखा है कि शारीरिक लुभावने वाली बातों से आप
कुत्ता पीछे है.
ऐसे भागो जैसे आपके पीछे कुत्ता हो.
Hallelujah.
Hallelujah.
Joseph did that.
यूसुफ ने वो किया.
Nobody would have known.
किसी को पता नहीं चलता.
Only person would have known is God.
सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता चलता
And
वो
he
है
said,
परमेश्वर.
I want to please this one.
और उसने कहा मैं इसे खुश करना चाहता
हूँ. In him there is no darkness.
और उसमें कोई अंधकार नहीं
Nothing
है.
Nothing can be hidden from the one above.
और कोई भी बात उससे छिप नहीं
सकती
है.
And I will pass the test before him.
और मैं ये परीक्षा उसके सम्मुख पास करूँगा.
And God said to him this.
और परमेश्वर ने उससे यह कहा.
I'll make you the most powerful man.
मैं आपको सबसे सामर्थ्यशाली
व्यक्ति बनाऊंगा. Because you can handle this, you can handle everything.
क्योंकि अगर इसे आप जूझ सकते हैं, तो आप सारी बातों से जूझ सकते हैं.
Today we live in a world of relativity.
और आजकल हम ऐसे संबंधों की दुनिया में रहते
Truth
हैं.
Truth is relative.
और सच महत्वपूर्ण नहीं
It's
है.
It's not an absolute. That's what the people say.
और वो महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे संसार के लोग कहते हैं.
If you like it, you do it. If you don't like it, don't do it.
अगर आपको ये बात करना पसंद है आप करो, नहीं पसंद तो मत करो.
No, no.
नहीं.
There is truth.
सच्चाई है.
And his name is Jesus.
और उसका नाम है यीशु.
Amen.
Amen.
There is an absolute truth, and it's him.
और एक पक्की सच्चाई है और वो है वो.
Today marriage has become such a In a word, not celebrated.
और आज विवाह ऐसी बात हो गई है जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता है.
We got to keep it holy.
हमें उसे पवित्र रखना है.
Because God is holy.
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है.
Joseph knew that his future depended upon the choices that he made on a daily basis.
और यूसुफ जानता था कि उसका भविष्य वो जो हर दिन चुनाव करता था उसी पर निर्भर
था. The future was wrapped around his relationship with God.
और उसका भविष्य परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता
है उस पर निर्भर था. He opened himself to the grace of God daily.
और परमेश्वर के अनुग्रह की ओर उसने अपने आप को हर दिन
खुला रखा. 1 Corinthians 10 verse 13.
एक कुरिन्थियों की किताब वचन 10.
It says no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability.
और वहाँ पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको.
Amen. He will always provide a way out.
वो हमेशा एक तरीका आपको देगा
James
बाहर
1
निकलने
verse
13,
का. It says, when tempted, no one should say, God is tempting me.
और जब परीक्षा होती है तो किसी ने यह नहीं करना कहना है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले
Last
रहा
Sunday
है.
Last Sunday I was in Virar and Sony. Where is Sony? Sony is here.
और गए रविवार में विरार में था. और सोनी
सोनी brought a word and she shared the scripture and I stood amazed when she shared the scripture.
और वो यही वचन था और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया.
And she went to Hebrews and other scriptures is we cannot say God is tempting us.
और वो इब्रानियों की और दूसरे वचन भी लेकर आई और उसने कहा कि हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है.
Grace is available.
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह
उपलब्ध है. If you're taking notes, take down Titus 2 verse 11 and 12.
अगर आप लिख रहे हैं तो लिख ले तीतुस 2.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Then it says, it teaches us to say no to unrighteousness and worldly passion.
और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है. और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं.
Lay hold of it.
आइए हम इसको पकड़ लें.
Last night I went for a wedding.
और मैं एक शादी में गया था कल की रात.
And I met a man whose son died on the 26th of of November.
और मैं एक व्यक्ति से मिला जिनका बेटा 26 नवंबर को गुजर गया.
He fell from the train.
और वो ट्रेन से गिरा.
And died.
और मर गया.
You know what he said?
आपको पता है उसने क्या कहा?
He says, I cannot understand the grace of God.
कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं सकता.
He says, I'm standing because His grace is available to me.
और मैं खड़ा हूँ क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध है.
You know, on the 26th, he preached a word about suffering.
और 26 तारीख को उसने पीड़ा को लेकर एक वचन बांटा था.
He preached to in two services.
और दो सभाओं में उसने प्रचार किया था.
He preached about suffering.
उसने पीड़ा को लेकर
बांटा
कि कैसे पीड़ा को गले लगाना
How
है.
God tests our lives.
परमेश्वर हमारी जीवन की परीक्षा कैसे
At
लेता
9
है.
o'clock in the night, the police calls up and says, your son is dead.
और 9 बजे पुलिस का फोन आया और उन्होंने कहा आपका बेटा मर गया है.
And he says, God had given me grace.
और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया.
Otherwise, I would not be standing.
नहीं तो मैं खड़ा नहीं रह पाता.
I tell you something.
मैं आपको कुछ बताऊँ.
His grace is available.
उसका अनुग्रह उपलब्ध है.
When you are tempted.
जब आपकी परीक्षा होती है.
Grace is available.
अनुग्रह उपलब्ध है.
You feel like giving up.
आपको लगता है कि आप हार
मान
ले.
His grace is available.
उसका अनुग्रह उपलब्ध है.
His grace is amazing.
उसका अनुग्रह अद्भुत है.
Amen.
Amen.
And I want to encourage you.
मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ.
Lay hold of the grace of God. I want to finish. Sorry, I've gone little.
परमेश्वर के अनुग्रह को पकड़ लो. एहसास का सामर्थ्य ये मेरा दूसरा मुद्दा है.
How do we inherit the promises of God?
कैसे हम परमेश्वर की विरासत को पा सकते
हैं? Joseph reached where God promised him.
और यूसुफ वहां गया जहां पर परमेश्वर ने उससे कहा.
Because he had the strength of conviction.
क्योंकि उसमें एहसास का सामर्थ्य था.
His brother, father, mother, everyone bowing down, that was the dream.
और उसके माँ बाप भाई सब झुक जाएंगे ये उसका ख्वाब था.
25 years later, it was fulfilled.
और 25 वर्ष बाद वो ख्वाब पूरा हो गया.
I don't have time to tell the whole story.
मेरे पास समय नहीं आपको पूरी कहानी बताऊं.
There was severe famine.
और अकाल था.
And the brothers have to travel to come and take the food from Joseph.
और भाइयों को सफर करके आना पड़ा ताकि वो यूसुफ से अनाज ले ले.
The moment he saw them, he knew they were his brother.
और जैसे यूसुफ ने उन्हें देखा, वो जान गया वो उसके भाई थे.
And for him, it was a time to take बदला.
और उसके लिए वो समय था कि वो बदला ले ले.
To take revenge.
के वो बदला ले ले उनसे.
They threw him into the well.
क्योंकि उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया.
They wanted to kill him.
वो उसे मार देना चाहते थे.
He was sold.
उसे बेच दिया गया
था. And they gave wrong report to the father saying the animals have killed him.
और उन्होंने अपने पिता को ये झूठी खबर दी कि जानवरों ने उसे
मार
दिया
है. As far as his father and mother is concerned, he is dead.
और माँ बाप तो सोच रहे थे कि वो मर गया है.
Now he is the most powerful person in the world.
लेकिन अब वो दुनिया में सबसे सामर्थ्यशाली.
He could have taken revenge.
वो चाहता तो वो बदला ले सकता था.
He could have just made them suffer until he sees them become nothing.
और वो चाहता तो उन्हें इतनी पीड़ा देता कि वो कुछ भी नहीं उस समान हो जाते.
But the story has a different ending.
लेकिन इस कहानी का एक अलग अंत है.
It says.
वहाँ पर लिखा है.
In Genesis chapter 1:45 verse 1-3.
उत्पत्ति के पहले अध्याय.
When he met
वचन
the brothers,
45 में
when he met the brothers,
जब उसने भाइयों से मुलाकात की.
It says this, can we just read it?
वहां पर ये लिखा है.
Genesis 45 verse 1-3. It says, Joseph could no longer control himself before all his attendants.
और वहां पर लिखा है, यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को रोक न सका.
He cried out,
और पुकार कर कहा,
Have everyone leave my presence.
मेरे आसपास से अब लोगों बाहर सब लोगों को बाहर कर दो.
These were the attendants and all the Egyptians.
और वो वहां पर जो मिस्र लोग थे.
There was no one with Joseph when he made himself known to his brothers.
और तब वहाँ कोई नहीं था जब उसने अपने आप को अपने भाइयों को बताया कि वह कौन है.
Then it says, he wept so loudly that the Egyptians heard him.
और वहां पर लिखा है दूसरे वचन में, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्त्रियों ने सुना.
Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living?
तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है?
And if you continue to read,
और अगर आप आगे पढ़ते हैं,
he embraced them.
तो उसने वहां उनको गले लगाया भाइयों को,
he forgave them.
और उन्हें क्षमा किया.
Absolutely everything that they did.
हर कोई बात जो उन्होंने की थी वो सारी बातों को उसने क्षमा किया.
He gave them land to live in Egypt.
उन्होंने मिस्र देश में रहने के लिए उन्हें भूमि दी.
He took care of them for the rest of their lives.
उनके आगे के जीवन की उन्होंने देखभाल की.
Why?
क्यों?
Joseph, why did you do that?
Yusuf, वो तुमने क्यों किया?
You should have taken badla.
तुम्हें उनसे बदला लेना
चाहिए. That's what the world teaches.
और दुनिया यही सिखाती
है. If someone has hurt you, you hurt him back.
अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो आप भी उसे चोट पहुंचाओ.
If someone is giving you bad words, you give him bad words.
अगर किसी ने आपको गाली दी आप भी उसे गाली दो.
If someone slaps you on one cheek, you slap him twice on those cheeks.
अगर कोई एक गाल पर आपको तमाचा देता है तो आप उसे दूसरे गाल पे जाके तमाचा दे दो.
What did Joseph do?
लेकिन यूसुफ ने क्या किया?
He had all the power in the world to make bring pain to his brothers.
उसके पास वो दुनिया की सारी ताकत थी ताकि वो अपने भाइयों को.
What did he do?
लेकिन उसने क्या किया?
He cried.
वह रोया.
He cried aloud. It says the whole Pharaoh's household heard it.
वो इतना चिल्ला कर रोया कि फिरौन के पूरे घराने ने उसकी आवाज
सुना.
It was
not the cry of revenge.
और वो बदले क्या रोना नहीं था.
It was a cry of forgiveness.
लेकिन वो क्षमा की पुकार थी.
It was a cry of demonstrating the heart of God.
और वो ऐसा रोना था कि वो परमेश्वर के हृदय को प्रकट कर रहा था.
Hallelujah.
Hallelujah.
We do have stories in the Bible.
हमारे पास शास्त्र में कहानियां हैं.
Where people forgave.
जहां पर लोग क्षमा करते हैं.
He embraced them.
उसने उन्हें गले लगाया.
He sent them word saying, "Go and bring your father."
और उन्होंने ये शब्द भेजा कि जाओ अपने पिता
bring
को लेकर आओ.
Everyone.
सबको लेकर.
I can take care of the next few generations.
और मैं आगे की चार
I
आगे की कई पीढ़ियों
so
का देखभाल कर सकता
हूँ. I have everything to take care of you.
और मैं इतना सामर्थ्यशाली हो गया कि मेरे पास सब कुछ है कि मैं आपका संभाल करूँ.
What a story.
क्या कहानी.
Do we do that?
क्या हम वो करते हैं?
We hold things against people.
हम एक दूसरे के लिए बातों को पकड़ते
हैं. Or we forgive.
या हम क्षमा करते हैं.
Joseph forgave.
यूसुफ ने क्षमा किया.
That's why he became and he remained.
इसलिए वह बना और वह रहा.
His bones spoke of what he did on a daily basis.
हड्डियों ने भी बात की जो उसने हर दिन किया उसको लेकर.
You know, today nowadays you read books.
और आजकल आप किताबें पढ़ते हैं.
In those days they read bones.
और उस दिन उन दिनों में वो हड्डियां पढ़ते थे.
Because that bone reminded them.
क्योंकि वह हड्डियां उन्हें याद दिलाती थी.
I want to tell you something.
मैं आपको कुछ बताना
There
चाहता हूँ.
There is one greater than Joseph.
और एक है जो यूसुफ से महान है.
There is one more powerful.
और एक है जो उससे भी ज्यादा सामर्थ्यशाली है. Yeshu.
And his name is Jesus.
और उसका नाम है
यीशु. One person who could have willfully and righteously take revenge on mankind.
और एक व्यक्ति जो चाहकर इच्छा अनुसार मनुष्य जाति से बदला ले सकता था.
A sinless person ever lived on the face of the earth.
और पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया.
He was betrayed by his close friends.
उसे उसके दोस्तों ने नकारा था.
He is denied by the closest associate.
और उसके साथियों के
ने उसे नकार दिया था. He was rejected by the people who ate from his hands.
और वो लोग जो उसके हाथ से खाना खाते थे उन्होंने उसे तिरस्कारित किया.
He was sold for 30 pieces of silver.
और चांदी के 30 कौड़ियों के लिए उसे
बेच दिया
गया
था. He was accused of something he never did.
और उस पर वो दोष लगाया गया था जो उसने कभी किया नहीं था. और उसका न्याय किया गया था अन्याय से.
He was treated as a criminal and a thief.
और उसे एक चोर के समान.
He was beaten and made to carry the cross.
उसे मारा गया था और उसे क्रूस
उठाया गया था. The worst punishment man has ever invented.
और सबसे बुरी ऐसी जो.
And on that cross, Jesus cried out, "Father,
और क्रूस
forgive them, for they know not what they are doing."
पुकार कर कहा, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं.
What they meant it for evil. Father, you're meaning it for good.
पिता वो जो बुराई चाहते थे उससे आप भलाई चाहते हैं.
The same Jesus can give us grace.
और वही यीशु हमें अनुग्रह दे सकता है.
He can give us his strength.
और वह हमें उसका सामर्थ्य दे सकता
Even
है.
He can forgive our sins.
और वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है.
Amen.
Amen.
There was a dream.
एक ख्वाब था.
There was a test of character.
और परीक्षा चरित्र की.
There was strength of conviction.
और सामर्थ्य एहसास का.
That made a man who he was.
जिसे जो वो व्यक्ति था उसे वैसे बनाया.
Let's close our eyes.
आइए हम हमारी आँखों
Sorry,
को बंद
we have
करते
gone
हैं.
Little late.
माफ करना थोड़ी देरी हो गई है.
Brothers and sisters.
भाइयों और बहनों.
We live in a real world.
और हम ऐसे संसार में रहते हैं.
There is pain.
जहाँ दर्द है.
You're unjustly treated.
और जहाँ पर आपके साथ बुरा व्यवहार होता है.
You've been misunderstood.
आपको गलत समझा जाता है.
You've been rejected like
आपका
Joseph.
तिरस्कार होता है यूसुफ की ही तरह.
But we have no option. We have no option but to forgive.
लेकिन हमारे पास और कोई चुनाव नहीं लेकिन क्षमा करना.
You've been tempted beyond what you can bear.
आपकी परीक्षा होती है आप सह सके उससे भी ज्यादा.
But you have no option.
लेकिन आपके पास कोई चुनाव नहीं
But to flee.
लेकिन भाग जाना.
Because the grace of God is available.
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है.
God has a dream for you.
परमेश्वर के पास से आप और से आपके लिए
God
एक ख्वाब
has a promise
है.
For you.
परमेश्वर के और से आपके लिए एक प्रतिज्ञा है.
And he will give you grace.
और वह आपको अनुग्रह
And
देगा.
He will fulfill what he has promised.
और जो प्रतिज्ञा उसने दी है उसे वो पूरा करेगा.
Father, we just want to thank you for this morning.
पिता हम इस सुबह के लिए आपको
thank
धन्यवाद
you for
कहते
men
हैं.
Like Joseph, Lord.
धन्यवाद यूसुफ के तरह जो लोग हैं उनके लिए.
That is an example for us.
क्योंकि वह हमारे लिए एक उदाहरण
है. Amazing example, Lord.
अद्भुत उदाहरण प्रभु.
Lord, help us to be like Joseph.
हमें मदद करो हम यूसुफ की तरह बने.
Help us to be like David's, Lord.
हमें मदद करो हम दाऊद की तरह बने.
Help us to be like Jesus.
और मदद करो कि हम यीशु के समान बने.
Our attitude will be same as that of Jesus Christ.
हमारा स्वभाव यीशु की तरह हो जाए प्रभु.
Lord, help us.
हमारी मदद करो.
Can I just do something?
क्या मैं कुछ कर सकता हूँ?
You need grace this morning.
आपको अनुग्रह की जरूरत है इस सुबह.
God has spoken to you something.
अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की है.
I want to stand.
तो आप खड़े रहे.
I want to pray for grace.
मैं अनुग्रह के लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ.
The unending supply of His strength and power.
कि उसका सामर्थ आपके अंदर आ जाए.
Will you just stand? You saying, I want grace, Lord.
और खड़े रहे अगर आप कहना चाहते प्रभु मुझे अनुग्रह की जरूरत है. प्रभु ने आपसे कुछ बात की है इस सुबह.
Otherwise, I want to bring the meeting in an end.
नहीं तो मैं सभा का अंत करना चाहता हूँ.